ओम शांति। पहली बार इस संसार को एक रंगमंच कहने वाला पश्चिम जगत का सबसे महान लेखक और कवि शेक्सपियर की एक अद्भुत कलाकृति कहो या नाटक कहो या उसके जीवन में लिखा हुआ सबसे लंबा नाटक हैमलेट, एक ऐसा नाटक कि जिसमें इतनी सारी चीजें छिपी हुई है कि उसके बाद कई सारे कवि और कई सारे लेखक उस नाटक के द्वारा पैदा हुए और अंग्रेजी भाषा और साहित्य की सर्वोच्च कलाकृति उसे कहा जा सकता है। उस हैमलेट की कहानी बड़ी ही अद्भुत है, दुखांत कहानी है, ट्रेजेडी, जिसमें अंततः जितने पात्र हैं एक छोड़कर सबकी मृत्यु होती है और एक उसका वाक्य है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, टू बी और नॉट टू बी। सुबह की साकार मुरली वरदान था क्या? परखने और निर्णय करने की शक्ति। तुमने पांच चीजों को पहचाना है, स्वयं को, बाप को, परिवार को, समय को और अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को। इसे पहचानने की तुम्हारे पास परखने की शक्ति है, इसलिए अब तुम्हारे पास निर्णय शक्ति आई है और तुम अब ये कह सकते हो कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस परखने की शक्ति के कारण, इस निर्णय करने की शक्ति के कारण, और जब मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही सेवाओं में परखने की शक्ति होगी और निर्णय करने की शक्ति होगी, तब क्या होगा? तब क्या होगा? सेवा में सफलता मूर्त बनोगे। हमारा संपूर्ण जीवन अगर देखा जाए, एक ही चीज हमें निरंतर करती रहनी पड़ती है और वो है निर्णय लेना, डिसाइड करना कितने बजे उठना है, कितने बजे नहीं उठना है, उठकर क्या करना है, अमृत वेले के बाद क्या करना है, डिसीजन। मुरली सुनना, वहां जाके सुनना है या यहीं सुनना है, डिसीजन। सारे दिन भर क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, किससे बात करना है, किससे नहीं बात करना है, किसको मैसेज करना है, किसको नहीं करना है, और किसके मैसेज का उत्तर देना है और किसके मैसेज का उत्तर नहीं देना है, कितने बजे सोना है, कहां घूमना है, कहां फिरना है। संपूर्ण दिनचर्या में एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है और वो है डिसाइड करना, और उसके पहले आता है परखना। तो परखना और निर्णय करना जुड़ा हुआ है। तो जिस शेक्सपियर के पात्र की हम चर्चा कर रहे थे, डेनमार्क का वो राजकुमार हैमलेट, उसमें दिखाया है हैमलेट के पिता की अचानक मृत्यु हो गई, जो कि राजा थे, किंग हैमलेट, और दो मास के अंदर हैमलेट की मां ने उसके पिता के छोटे भाई से शादी कर ली। सब कुछ आश्चर्यजनक लगा, जबकि उसे राजा बनना था, वो उत्तराधिकारी होने वाला था, परंतु क्योंकि मां ने अपने पति के छोटे भाई से शादी कर ली तो सब कुछ रहस्यमय था। हेमलेट अपने मित्र होरेशियो के साथ एक दिन कहीं से आ रहा होता है और उसने सुना होता है कि एक प्रेत आत्मा वहां आती है। कई लोगों ने सुनाया, कोई तो एक आत्मा आती है और वो आत्मा तुम्हारे पिता की है, किंग हेमलेट की, और वो वही सारे कपड़े पहनकर राजाई थर्ड पार्ट में वहां आती है एक स्थान पर। उसे लगता है, मैं देखूं तो सही क्या है, वो मित्र होरेशियो और एक तीसरा मित्र के साथ वहां जाते हैं और वहां पर वो प्रेतात्मा आती है। पहले तो विश्वास नहीं करता कि ये मेरे पिता ही है, परंतु बाद में वो प्रेतात्मा, उसे लगता है उससे कुछ कहना चाहती है और अकेले में कुछ कहना चाहती है और हेमलेट को अकेले में लेके जाती है और वो उसके पिता की आत्मा होती है और उसको कहती है कि मेरी मृत्यु नहीं हुई है, मुझे मार दिया गया है और मेरा जो छोटा भाई है उसी ने मुझे मारा जहर देकर, और तुम्हारी मां ने उसके साथ शादी कर ली, शायद वो भी उसमें मिली हुई है, पर तुम उसको कुछ मत करना, पर मेरी मृत्यु का बदला जरूर लेना। और जब से ये प्रेतात्मा दिखती है, हेमलेट दिन रात परेशान, दुखी, उदास सोचता है क्या करूं, कैसे बदला लूं, और उसे विश्वास भी नहीं होता कैसे मैं मान लूं कि ये मेरे पिता की ही आत्मा है, हो सकता है कोई और आत्मा है जो मुझे बरगला रही है। तो वो एक नाटक रचता है, उसके मित्र होते हैं उनको बुलाता है और नाटक एक राजभवन में करते हैं। उस नाटक में का भाव ही ऐसा होता है कि एक राजा है जिसे मार दिया गया किसी एक कर्मचारी ने, और फिर राजा की पत्नी ने उसके साथ शादी कर ली और वो राजा बन गया। उसे देखना था कि ये जो है क्लाउडियस स्टेप फादर, उसकी क्या रिएक्शन है। और जैसे ही वो सीन आता है, उसके जो वो पिता होते मतलब स्टेप फादर वहां से उठ के चले जाते हैं, उसकी चेहरा बदल जाता है, तब उसे कंफर्म हो जाता है कि इसी ने ऐसा किया है और वो प्रेतात्मा सत्य कह रही है। तो उस नाटक में ऐसी सारी चीजें दिखाई है, और एक सीन है वहां पर Act 3 Scene 1 जहां पर वो अपने आप से बात करता है, निर्णय नहीं ले पाता पूरी नाटक में टू बी और नॉट टू बी, करूं कि नहीं करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। इसको कहते हैं पैरालिसिस ऑफ इनडिसीजन, अनिर्णय का पक्षाघात, निर्णय ही नहीं कर पाता करना है कि नहीं करना है, टू बी और नॉट टू बी, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। दिन रात सोचते रहता है क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या करूं कैसे करूं, फिर युक्ति रचता है, पागल जैसा व्यवहार करता है और लोग सोचता है कि मैं पागल जैसा दिखूंगा तो ये लोग समझेंगे ये तो पागल है, और उसी पागलपन में अंदर ही अंदर योजना बनाता है मारने की। उसमें फिर बहुत सारे सब प्लॉट्स है, जैसे कहा लंबा नाटक है, वो उसकी एक प्रेमिका है और उसका एक भाई है और उसके एक पिताजी है प्रेमिका के, तो एक बार गुस्से गुस्से में अपनी मां के पास पहुंचता है और कहता है मुझे बताओ सत्य क्या है, तो वो तो कहती है ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत तो उसको पूछता है और कन्विंस करने की कोशिश करता है कि ऐसा ही हुआ है, तुमने ही, तुमने मेरे पिता के हत्यारे के साथ क्यों शादी की, वो सब पूछता है और उसको लगता है पर्दे के पीछे कोई है और वो सोचता है कि ये वही है क्लाउडियस स्टेप फादर, और चाकू मार देता है, परंतु वो पोलोनियस होता है जो उसकी प्रेमिका होती है, उसके पिता जो कि दरबारी होते हैं उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसी बहुत सारी चीजें दिखाए, एक एक पात्र मृत्यु, एक एक पात्र की, इसके लिए इसको ट्रेजेडी कहा हुआ है, और सारे नाटक में उसकी दशा का वर्णन है कि वो कोई भी निर्णय नहीं ले पाता, टू बी और नॉट टू बी, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। उसके पिता जो होते हैं उसे कहीं दूर भेज देते हैं पत्र के साथ इंग्लैंड में कि इसको मार दो, परंतु वो पत्र वो दो साथियों के साथ दे देता है, खुद कहीं और जाता है, वहां पर और आक्रमण होता है। ऐसी बहुत सारी ढेर सारी बातें हैं उसमें, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। उन दोनों सिपाहियों की भी हत्या हो जाती है, वो वापस आता है, देखता है उस जिससे उसको प्रेम था ओफेलिया, वो भी पागल जैसी हो गई, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे पिता को इसने मार दिया जिससे मैं प्यार करती थी, तो वो भी मर जाती है। और जब वो हैमलेट आके देखता है कि वो मर गई है, उसका भाई होता है वहां पे, उसको लगता है इसी ने मारा, तो दोनों की फिर लड़ाई होती है। और फिर कुछ दिखाया है तो वो अपनी तलवार पे विष लगा देता है और हैमलेट को मार देता है, और हैमलेट तलवार एक्सचेंज हो जाती है, हैमलेट उसको मार देता है। उसके पिता जो होते वो बचे हुए हैं, अभी भी मां बची हुई है। तो उसके पिता ने एक योजना रची थी कि इसको जहर पिला दो, पर वो जहर उसकी मां पी लेती है, वो मर जाती है और बचते हैं केवल पिता। तो लास्ट में हैमलेट को पता चलता है, वो तलवार लेके अपने पिता को भी मार देता है। इसको ट्रेजेडी कहा हुआ है। ढेर सारी फिल्में और क्या क्या इस पर बने हुए हैं विश्व भर में, इसको हजारों एंगल से साइकोलॉजिस्ट भी स्टडी करते हैं एक एक पात्र को। तो कहने का भाव था उसमें एक वाक्य जो बहुत प्रसिद्ध है, वो उसका अपना सलोलोक्वे, अपने आप से जो बात करता है एक कमरे में बैठकर, क्या है जीवन समझ नहीं आ रहा है, टू बी और नॉट टू बी। कई सारी भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन हुआ है, जगाव की मरा वहा एक का सवाल है, मराठी भाषा। अलग अलग लेखकों ने अलग अलग तरीके से इसको लिया है, जीवन में करना क्या है क्या नहीं करना है। तो ये जो निर्णय है और ये जो अवस्था है अनिर्णय की, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो बाबा ने कहा तुमने इन पांच चीजों को पहचाना है, स्वयं को, बाप को, कर्तव्य को, समय को और परिवार को। परखने की शक्ति तुम्हारे पास है, इसलिए निर्णय करने की शक्ति है। निर्णय कौन सा, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या बनना है क्या नहीं बनना है, ये दो शब्द बाबा ने कहे वरदान में। और जब तुम मनसा वाचा कर्मणा इन दोनों शक्तियों का प्रयोग करते हो, तब सफलता मूर्त बनेंगे। तो जीवन अर्थात निर्णय, सुबह से लेकर रात तक, ये दिन के निर्णय, कुछ होते बड़े निर्णय, कहां रहना है, मधुबन में रहना है घर पे रहना है, सेंटर पर रहना है घर पे रहना है, जॉब करना है नहीं करना है, हर चीज में निर्णय ही निर्णय। सुबह से लेकर रात तक जल्दी सोना है कि थोड़ा सा सोशल मीडिया और इसको मैसेज और उसको मैसेज और ये भी देख लूं और वो भी देख लूं, निर्णय, हर चीज डिसीजन है। तो निर्णय कैसे ले, निर्णय शक्ति का प्रयोग कैसे करें, इसकी हम 16 विधियां देखेंगे, 16 स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग। कोई भी निर्णय हो सकता है, वो जीवन का, किसी और के लिए भी हमें निर्णय लेना पड़ता है, कभी कभी बच्चों के लिए, माँ बाप को निर्णय लेना पड़ता है उनको किस स्कूल में डाले, बच्चे हैं पढ़ रहे हैं और गलत संघ में चले गए, अब क्या करें, कैसे उनको वहां से बाहर निकाले, और वो सुनते नहीं है। हाँ वो तो है सकाश, परंतु निर्णय, निर्णय की जो शक्ति है, डिसीजन मेकिंग जो पावर है, उसको कैसे डेवलप करें, या कोई भी जीवन का निर्णय है, कॉलेज जाना है या घर पे पढ़ना है, स्टडी आगे कंटिन्यू करनी है कि बहुत हो गया, अविनाश सामने खड़ा है, छोड़ो सब कुछ और लग जाओ पुरुषार्थ में, निर्णय डिसीजन। तो इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, निर्णय करने की इस क्रिया में कुछ बातें हैं, तो वो बातें हम देखेंगे कि हमें इन सारी बातों को वहां अप्लाई करना है जहां हमें कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेना होता है। डिसीजन के भी टाइप्स है, कोई कोई जीवन के डिसीजन होते बड़े, टू बी और नॉट टू बी, कोई डिसीजन छोटे छोटे होते दिनचर्या के, अमृत वेला हो गया, अमृत वेले के बाद कैसा सन्नाटा छा जाता है, कोई नहीं दिखता है, सब अपने अपने दिल में जाके छिप जाते हैं। डिसीजन मुरली आई, चिंतन करना है ऐसे छोड़ देना है पढ़ के। डिसीजन खाना, इतनी सारी चीजें बनी है, सब खा लूं या थोड़ा छोड़ू, ये खाऊं कि एक खाऊं कि दो खाऊं, उसमें भी डिसीजन, दो खाना है कि एक खाना है, एक अभी खाता हूं एक लेके जाता हूं बाद में खाने के लिए। हर चीज में डिसीजन, कितना लेके जाऊं उसमें भी। हर चीज में डिसीजन ही डिसीजन है, दिन सुबह से लेके तो रात तक डिसीजन। तो 16 स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1, कोई भी डिसीजन के लिए इन स्टेप्स को हमें अप्लाई करना है। सबसे पहले गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, जिस चीज के बारे में डिसीजन लेना है उसके संबंधित जितने तथ्य है, बातें हैं, सूचनाएं हैं, ज्ञान है, सारा इकट्ठा करना कोई भी डिसीजन लेने से पहले। ऐसा ना हो कि हमने डिसीजन ले लिया और बाद में कहा हमको तो पता ही नहीं, हमको तो ये बात का ज्ञान ही नहीं था, हमको तो ये बनना ही नहीं था, हमको तो माँ बाप ने बोल दिया मेडिकल कॉलेज में चले जाओ, बाद में पता चला रही ये क्या है। हमारा एक दोस्त था बहुत सालों पहले, MBBS में आया, 6 मास के बाद घर चला गया, वो कहता है मुझे करना ही नहीं है। फिर हम लोग उसको लेने गए, वापस लेके आए पहली बार, फिर भाग गया, फिर दूसरी बार गए, तीसरी बार गए, उसने कहा मुझे आना ही नहीं है, मैं आऊंगा ही नहीं, छोड़ दिया उसने, जबरदस्ती आ गया था, माँ बाप ने कहा तो जबरदस्ती डिसीजन ले लिया था, रॉन्ग डिसीजंस, उसे कुछ और ही बनना था। तो कोई भी निर्णय लेने से पहले क्या करना है, कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन, सारी बातें उससे संबंधित जितनी होगी वो सारी बातें इकट्ठा करो, दूसरों से करो, इंटरनेट से करो, गूगल से करो, कहीं से भी जानो उसको, जो डिसीजन हम लेने वाले, पार्ट टाइम जॉब करना है, फुल टाइम जॉब करना है, डिसीजन है, मधुबन में हमेशा के लिए रह जाना है या फिर आना जाना करना है, बहुत सारी चीजें हैं। मधुबन निवासी बन जाना है या सेंटर निवासी बन जाना है या दोनों ही से दूर, यही ठीक लगता है। एक सेंटर में जाना है कि दूसरों सेंटर से भी जाते रहना है, यहां हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर डिसीजन हमको लेना है जीवन का, उस पर्टिकुलर डिसीजन की बारे में नॉलेज, नॉलेज इसलिए कि ऐसा ना हो कि हमें कुछ बातें पता ही नहीं थी और बाद में हमको पश्चाताप हो जाए। कहीं किसी से कोई लोन ले रहा है और बहुत सारी बातें पता ही नहीं और लोन लेने के बाद अभी फंस गया, यह भी एक डिसीजन है। तो गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन फर्स्ट, सेकंड स्टेप डिसीजन मेकिंग में विकल्प क्या क्या है, नो द ऑप्शंस, राइट डाउन ऑप्शंस, ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या क्या किया जा सकता है, ये करूं, लिख के रखना 1, 2, 3, 4, इन चार में से क्या करना है। जैसे अमृत वेला जल्दी उठना है, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन, देर से उठा तो भी ठीक है। तीसरा ऑप्शन, मिस हुआ एक आधे बार तो क्या फर्क पड़ता है, ये हम सोच रहे जस्ट अमृत वेले के विषय में, फायदा सबसे ज्यादा किस में है। ऑप्शन इसलिए चाहिए इस चीज के लिए, हम कमरे में करना है या वहां सबके साथ संगठित में जाना, जाकर करना है। पावरफुल कहां होता है, नींद ज्यादा कहां आती है, कमरे में नींद आ जाती है, बेड पर करना है या बेड से उठकर थोड़ा बाजू में बैठ के करना है या सबके साथ जाके करना है। ऑप्शंस, नो द ऑप्शंस, इस कंपनी में जॉब करूं या उस कंपनी, इस कंपनी का छोड़ दूं या कहीं और जाऊं, अगर कोई जॉब करता है तो, पढ़ाई करता है तो, ये एग्जाम देनी चाहिए अभी या थोड़ा रुकना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इसमें, कितना टाइम देना पड़ेगा, कितनी प्रिपरेशन की आवश्यकता है, बीमारी है इस हॉस्पिटल में जाऊं या उस हॉस्पिटल में जाऊं, डिसीजन, इसको दिखाऊं या उसको दिखाऊं, डिसीजन, हर चीज में डिसीजन है एंड ऑप्शंस हमारे पास होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बस ये एक ही है, बस कोई भी डिसीजन के लिए ऑप्शंस, 1, 2, 3। थर्ड स्टेप, फायदे और नुकसान। थर्ड स्टेप है फायदे क्या है, नुकसान क्या है। एक शीट बनाना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्प्रेडशीट, जिसमें लिखना कि ये मैं करता हूं तो ये फायदे है, नहीं करता हूं तो ये फायदे है। अगर जॉब करता हूं तो मेरा इतना टाइम जाता है, जॉब नहीं करता हूं तो इतना टाइम मेरे पास रहता है, फुल टाइम करता हूं, पार्ट टाइम करता हूं, डिस्टेंस कोई नजदीक वाला है या पास या दूर है, ये सेवा करता हूं या सेवा को चेंज करूं, कोई भी चीज, डिसीजन, फायदे और नुकसान। अगर ये डिसीजन मैं ले लेता हूं तो मुझे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इसका हमें पूरा ज्ञान चाहिए पहले से ही। तो ये तीन महत्वपूर्ण स्टेप है। पहले स्टेप बताई, सारी सूचना जानकारी इकट्ठी करो कोई भी डिसीजन लेने से पहले। दूसरी स्टेप बताई, ऑप्शंस क्या क्या है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तीसरी स्टेप बताई, फायदे क्या है, नुकसान क्या है। चौथी स्टेप, मुझे कौन कौन से भय है ये डिसीजन लेने में, क्योंकि हम बहुत सारे निर्णय इसलिए ले पाते क्योंकि भय की स्थिति है, वही हेमलेट जैसी हमारी स्थिति है, टू बी और नॉट टू बी, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। वो सोचते ही रहता है लास्ट तक और उसे कोई निर्णय नहीं ले पाता, वो दुविधाओं की अवस्था होती है। कई लोगों की हमने देखा ऐसी अवस्था है, न यहां के न वहां के, बीच में लटके हुए त्रिशंकु की तरह, न इधर न उधर, ना तो तीव्र पुरुषार्थ और ना तो पुरुषार्थ को छोड़ दिया, चल रहे हैं बस। सुबह उठो, अमृत वेला करो, मुरली सुनो, नाश्ता करो, सेवा करो, काम पूरा हुआ, उसमें कोई जान नहीं है, कोई आग नहीं है, अंगार नहीं है, कोई चिंगारी नहीं है पुरुषार्थ की, डल है, ऐसा पुरुषार्थ चल रहा है। तो चौथी स्टेप बताई, भय, किस चीज का मुझे भय है, भय को जानो, भय को समझो, मन में भय है, ये कर दिया तो कुछ ये तो ना हो जाए, ये किया तो कहीं वो तो ना हो जाए, कौन से भय है हमारे अंदर कुछ करने में, कोई कुछ कह ना दे, एनलिस्ट योर फियर्स, फियर्स की लिस्ट। नेक्स्ट स्टेप, बुरा से बुरा क्या हो सकता है अगर मैं ये करूं तो, वर्स्ट केस सिनेरियो जिसको कहते हैं, अगर मैं ये कर लूं तो वर्स्ट क्या हो सकता है, खराब से खराब, पहले से ही सोच के रखो, ये अगर करता हूं तो वर्स्ट, एकदम बुरा से बुरा क्या हो सकता है। जैसे कोई अमृत वेला उठता ही नहीं है और सोचे कि मैं 4 बजे कल उठना है मुझे, बुरा से बुरा क्या होगा, नींद आएगी, या तो अमृत वेला नींद आएगी या तो मुरली में नींद आएगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। ये तो हम यहां की बात कर रहे हैं, परंतु किसी भी क्षेत्र में ये लिया जा सकता है, पहले से ही थोड़ी जानकारी हो कि ये डिसीजन अगर मैं लेता हूं जीवन का, ये प्रतिज्ञा अगर मैं करता हूं, व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन, क्या वर्स्ट हो सकता है। पहले से ही थोड़ा सा जानकारी हो ना तो हल्के रहेंगे, अगर वो हुआ भी तो, नहीं तो भारी हो जाएंगे और फिर कोसते रहेंगे, अरे वही अच्छा था, यहां क्यों आ गए, ऑप्शन ए ही अच्छा था, ये बी में क्यों फंस गए, और दिन भर दिन रात जीवन भर सुनाते रहेंगे दूसरों को कि वो हमने किया होता ना तो अच्छा होता, ये गलत कर दिया, वही डिपार्टमेंट अच्छा था, फालतू में चेंज किया। मैं एक रावण था, यहां 10 बैठे हैं। रिपेंट, पश्चाताप करते रहते जीवन पर्यंत। तो भय, और दूसरा बताया वर्स्ट केस सिनेरियो, बुरा से बुरा क्या हो सकता है, लिख के रखना, ये दो चीजें। उसके बाद में भविष्य के विषय में सोचना, इस निर्णय का मेरे भविष्य पर क्या परिणाम होगा। थिंक अबाउट फ्यूचर, जो भी निर्णय मैं ले रहा हूं उस निर्णय का भविष्य पर क्या परिणाम होगा। जैसे बाबा हमेशा नई नई आदतों की बात करते, ये आदत करो, जैसे आज सुबह की मुरली में है, रोज एक आत्मा को बाप का परिचय दो। एक दिन भी ऐसा ना जाए कि जिस दिन हम परिचय नहीं देंगे, हाँ ये हो सकता है 100 में से एक ही निकलेगा, वो दूसरी बात है, पर एक दिन भी ना जाए कि जिस दिन हम बाप का परिचय ना दे। शमशान में जाओ और कहां जाओ, मंदिरों में जाओ, सब जगह जाओ। ये एक आदत है, ये एक हैबिट है। अगर ये हैबिट मैं आज डेवलप करता हूं तो इसका फ्यूचर में क्या परिणाम होगा। जैसे मुरली चिंतन की आदत, मुरली के शब्द, मुरली के वाक्य, मुरली की बातें लेना और उनका चिंतन करना, अध्ययन करना, अभ्यास करना, या फिर अशरीरीपन का अभ्यास करना। विदेश में एक प्रोजेक्ट अभी चालू होने वाला है, या शायद आज से चालू हुआ है, या 1 तारीख से लेके तो जनवरी अव्यक्त मास के लिए, जो एकदम कोर ग्रुप है साइलेंस वाला, उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है कि दिनचर्या में हर घंटे में 10 मिनट विश्व को सकाश देनी। बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। 1 तारीख से 18 तारीख तक हर घंटे में 10 मिनट साइलेंस की सकाश विश्व को देनी है। विज्ञान सत्ता, धर्म सत्ता, राज्य सत्ता हलचल में है। इन तीनों को 10 मिनट्स तक, एवरी आवर, हर घंटे में, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। पर ऐसे बहुत गुप्त पुरुषार्थी यहां बैठे हुए हैं, जिनके विषय में कोई कुछ नहीं जानता और जिनका गहन तपस्या चालू हुई है। उनका कहना है ये बोलना एक बहुत बड़ा एडिक्शन है। भारतीय की सेवा ज्यादा बोल वाली है, पर अभी समय है मौन सेवा की। बहुत सारे विदेश में, यहां वहां कई भाई बहने सब अपना जॉब वगैरह छोड़कर कहते हैं कि बस हमको साइलेंस में रहना है, बस साइलेंस रिट्रीट। भारतीयों की रिट्रीट बोलने वाली रिट्रीट होती है, क्लासेस ही क्लासेस, क्लासेस ही क्लासेस। वो कहते हैं बड़ा एडिक्शन है ये, इससे बाहर निकलना है। मौन भट्टी, साइलेंस रिट्रीट। तो थिंक अबाउट फ्यूचर, कि ये जो मैं डिसीजन ले रहा हूं, ले रही हूं, इसका भविष्य में क्या परिणाम होगा। दूसरा, सेकंड पॉइंट उसी के साथ जुड़ा हुआ, थिंक अबाउट अदर्स। मैं ये डिसीजन अगर लेता हूं मेरे घर पे, मेरे लौकिक घर में, मेरे ऑफिस में, इस परिवार में, तो दूसरों पर इस डिसीजन का क्या इफेक्ट होगा। जैसे एक डिपार्टमेंट है, उसमें एक भाई ये डिसीजन लेता है कि हर घंटे में मुझे सारे विश्व को सकाश देनी है, तो आसपास वालों पर क्या परिणाम होगा, दूसरों पर क्या परिणाम होगा, पॉजिटिव डिसीजन का, निगेटिव डिसीजन का, दूसरों के ऊपर होने वाला परिणाम, लौकिक वालों की तरफ अलौकिक, परिवार में इफेक्ट, संसार में क्या इफेक्ट होगा, प्रकृति पर क्या परिणाम होगा, अदर्स में सब आ जाएंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें, थिंक अबाउट फ्यूचर, भविष्य के बारे में सोचो, इस डिसीजन का भविष्य पर क्या परिणाम होगा। अगर अभी एक अच्छी आदत हमने बना ली अभी बहुत कठिन लगती है वो आदत, बिल्कुल मना करता है मन, कहता है नो, पर अगर इसको आदत बना ली तो इसका क्या परिणाम होगा। एक आदत बना लूं कि हमको टाइम वेस्ट ही नहीं करना है बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया सारी वेस्ट करती रहे, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आदत, एक दूसरी आदत, जब भी ट्रैवल करो चुप रहेंगे, कितनी अच्छी आदत है। कुछ कुछ ड्राइवर्स आपने देखा होगा, ड्राइविंग करते तो बिल्कुल बात नहीं करते, और कुछ कुछ ड्राइवर बहुत बात करते रहते हैं यहां वहां की। किसके साथ ट्रैवल करना अच्छा लगता है? जो चुप रहते हैं। ताकि हम अपना काम कर सके मन में, या जैसे भी जो भी कर रहे हो, तो आदत है वो भी एक, साइलेंस ड्यूरिंग ट्रैवल। इसका दूरगामी क्या परिणाम होगा, या दूसरों पर क्या परिणाम होगा, तो ये दो बातें। उसके बाद ये जो डिसीजन है, ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? जैसे युगल है, एक ज्ञान में है दूसरा नहीं है, वो कहता है हमको तो छोड़ना है, इसको तलाक देना है। ये डिसीजन अगर मैं लेता हूं, ये रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल है? रिवर्सिबल है तो ठीक है, इरिवर्सिबल है तो बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा कि एक बार जो चेंज कर दिया बाद में वापस नहीं आएगा। एक बार डिपार्टमेंट बदल दिया, वापस कहो कि नहीं नहीं वही पहला वाला ठीक था, हमको वही चाहिए, फिर नहीं मिलेगा। तो डिसीजन रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, इसके विषय में सोचना। दूसरे शब्दों में, टेम्पररी है या परमानेंट है, ये पहली बात। दूसरी बात, डिसीजन जो मैं ले रहा हूं, जो निर्णय मैं कर रहा हूं, वो एक उत्तेजना है, इंपल्स है, या इंटेलिजेंट डिसीजन है, सोच समझ कर लिया गया डिसीजन है, या बिना सोचे लिया ले रहा हूं, किसी ने मुझे कह दिया, किसी पर गुस्सा आ गया, हमने डिसीजन लिया आज के बाद इससे बात नहीं करेंगे, ठीक है, और चार दिन के बाद हम भूल गए, और फिर वही प्यार वाले संकल्प आ गए, वही लगाव वाली चीजें वापस प्रकट हो गई। अब वो डिसीजन का क्या हुआ, गया ना पानी में। वो डिसीजन था, परंतु वो डिसीजन कैसा था, इंपल्सिव था, उत्तेजना के ऊपर आधारित था। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये डिसीजन रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, अल्पकाल का है या सदाकाल का है, और दूसरी बात बताई, इंपल्सिव है या फिर इंटेलिजेंट डिसीजन है। जो भी डिसीजन हम ले, इंटेलिजेंट। इसलिए बाबा एक अभ्यास हमेशा देते हैं, शक्तियों का आह्वान करो। यह अभ्यास संसार में किसी ने आज तक नहीं बताया, शक्तियों का आह्वान। जैसे हमें कोई निर्णय करना है, समझ नहीं आ रहा है बाबा क्या करूं, करूं या ना करूं, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। समझ नहीं आ रहा है, ये सोचता हूं तो वो भी ठीक लगता है, वो सोचता हूं, वो दुर्योधन जैसी अवस्था है। कर्ण कहता है दुर्योधन से, अरे तुम ये क्या कह रहे हो, छल कपट, तुम वीर हो, योद्धा हो, शूरवीर हो, तुम्हें तो लड़कर पांडवों से राज्य लेना चाहिए। कर्ण, युधिष्ठिर, दुर्योधन कहता है, जब मैं तुम्हारी बातें सुनता हूं तो तुम्हारा ही सब कुछ राइट लगता है, पर जैसे ही मामा जी की बातें सुनता हूं, शकुनी की, तो उनका सब कुछ राइट लगता है। टू बी और नॉट टू बी, हमेशा दुविधा में है, इधर का सुनू या इसका सुनू या उसका सुनू। उसके मामा ने ट्रेनिंग ही उसको ऐसी दी बचपन से। दुर्योधन, अपने पिता के अन्याय को सहन करने की शक्ति धारण करो, ऐसे ऐसे उकसाया उसको। इसके लिए आग बहुत भड़क गई अंदर ही अंदर, इनडिसीजन। हमने कई लोग देखा है करियर में भी डिसीजन नहीं ले पाते, एडमिशन ले कि नहीं ले, डिप्लोमा डिग्री नहीं मिल रही है, डिप्लोमा करना है कि नहीं करना है, करियर के विषय में डिसीजन नहीं ले पाते। हाँ, वो भी एक पॉइंट है, आगे आएगा, उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो अभी तो खाली ये दो बातें बताई, कि डिसीजन जो ले रहे वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल, और दूसरी बात बताया, डिसीजन जो है वो इंपल्सिव है, उत्तेजना के कारण है, आवेश के कारण है, आवेग के कारण है, या बड़ा सोचा समझा हुआ इंटेलिजेंट डिसीजन है। ये दो बातें। उसके बाद में एक टेक्निक है साइकोलॉजी में, डिसीजन मेकिंग में, जिसको कहते हैं 5 why टेक्निक। वाई अर्थात क्यों, 5 क्यों पूछना। जैसे उदाहरण के लिए, मैं अमृत वेला लेट उठता हूं, मुझे अमृत वेला जल्दी उठना है, क्यों? पहला प्रश्न। क्यों नहीं उठ पा रहा हूं, क्योंकि मैं रात को लेट सोता हूं, क्यों रात को लेट सोता हूं? सेकंड प्रश्न। क्योंकि मुझे व्हाट्सएप पे बहुत कुछ काम करने हैं, क्यों व्हाट्सएप पे मुझे इतने काम करने हैं? क्यों? तो क्यों करना है, तो अभी मैं सोच रहा हूं क्यों करना है। फिर हम कहेंगे हाँ सेवा के लिए, नहीं सेवा तो दूसरे टाइम भी हो सकती है, क्यों? क्यों 5 बार क्यों पूछना, जो भी प्रश्न पूछो क्यों क्यों क्यों, पीछे पीछे जाके क्यों। मुरली चिंतन करना है, क्यों करना है? पढ़ना काफी है ना, बस सुन लिया सुबह, डायरी बंद, अब आगे क्या करना है? प्रेजेंट ही तो लग गई, सबने देख लिया, अब खतरा नहीं है, कोई आके पूछेगा नहीं कि तुम दिखे नहीं आज, इतना खतरा मिट गया, मतलब सुरक्षित है। 4 दिन नहीं गए, अरे तुम नहीं थे, क्या हुआ, माया ने खा लिया क्या? ऐसे बड़ा ब्राह्मणों से डर रहता है। क्यों सुनना है? तो क्योंकि बाबा ने कहा है। क्यों क्यों क्यों, इट इज नोन एज 5 why टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो कोई भी डिसीजन मेकिंग के लिए इन 5 पीछे पीछे जाना, क्यों मैं नहीं उठ पा रहा, क्यों मैं चिंतन नहीं कर पा रहा हूं। जैसे चिंतन का ले लो, क्यों चिंतन नहीं कर पा रहा हूं? क्योंकि बाकी चीजों का चिंतन चल रहा है। क्यों बाकी का चीजों का चिंतन चल रहा है? क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है उसमें, कहां कुछ हो जाता है तो मैं जानना चाहता हूं, और क्या और क्या और क्या और क्या। बड़ी चटपटी है ये बातें। बाबा के अव्यक्त महावाक्य 31 जनवरी 1995। जितनी न्यूज समाचार दिलचस्प होगा उतना ही वो व्यर्थ होगा। जितना ही समाचार दिलचस्प होगा उतना ही वो व्यर्थ होगा। इसके लिए रात को सोते समय अगर कोई बात सेवा की करनी है तो कमरे से बाहर जाओ, डिस्कस करो, फिर कमरे में आके सो। कमरे का वाइब्रेशंस उन व्यर्थ झरमोई झरमों की बातों से खराब नहीं करो। सोने की विधि सुनाई है उस मुरली में बाबा ने। तो वाई 5 वाई। उसके बाद में उसी के साथ जुड़ा है थॉट स्पेस। थॉट स्पेस क्या होता है? थॉट स्पेस अर्थात बहुत सारी चीजें हमने जान ली, पढ़ ली, अब एकांत में मेडिटेशन में बैठ जाओ, एक विचार और दूसरे विचार के बीच में स्पेस चाहिए, तो ही हम प्रॉपर निर्णय कर सकेंगे। केवल बैठ गए, जैसे कहा ना बहन जी ने, प्लेन बुद्धि होकर सारा पहले पढ़ लिया, उसके बारे में जान लिया, सोच लिया, समझ लिया, बेनिफिट्स देख लिए, नुकसान देख लिए, फ्यूचर में क्या होगा, असर क्या होगा, दूसरों पर क्या असर होगा, सारा कुछ जान लिया समझ लिया, पर फाइनल डिसीजन अभी लेना है, उसके लिए थॉट स्पेसिंग चाहिए। बैठ जाओ और किसी अज्ञात क्षण में वो उत्तर आएगा। जैसे सोक्रेटिस के लिए, आर्किमिडीज के लिए, उसको राजा ने कहा कि ये मुकुट है, इसमें सोना कितना है और एलॉय कितना मिक्स है वो पता करो। उतना दिन रात सोचता रहा, दिन रात सोचता रहा, दिन रात सोचता रहा, नहीं पता चला। एक दिन नहा रहा था टब में बैठकर और अचानक उसको स्ट्राइक हुआ और वहां से चिल्लाते हुए वैसे ही निर्वस्त्र यूरिका यूरिका चिल्लाते चिल्लाते राजभवन में पहुंच गया। अरे लोगों ने कहा क्या हुआ, और बोले मुझे उत्तर मिल गया। कहां मिला? नहाते समय, और जहां बैठकर बड़े विचार सागर मंथन कर रहा था क्या हो सकता है, तब नहीं मिला। उत्तर तो तभी मिलता है जब उसको हम छोड़ देते, उस किसी अज्ञात क्षणों में वो मिलता है। जैसे किसी का नाम याद नहीं आ रहा, यहां बैठ के मैं याद कर रहा हूं, याद कर रहा हूं, याद कर रहा हूं, याद कर रहा हूं। जैसे अभी ये क्लास ही ले लो, ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूं, अरे पॉइंट भूल गई भूल गई भूल गई, क्लास पूरा होने के बाद जाते समय अरे ये है वो पॉइंट, पता नहीं तब कहां चली गई थी। कभी कभी जिसको याद करने की कोशिश कर तो जब से जब तक उससे टेंशन हटता नहीं है वो याद नहीं आता है। एग्जाम में तो वैसा ही होता है, एग्जाम पेपर से बाहर निकलो, ये तो मुझे पहले ही पता था, इसके ऊपर तो मैं मेरी मास्टरी थी और वही गया, ऐसा होता है। इसके लिए डिटैचमेंट है ये, थॉट स्पेसिंग। जब डिसीजन लेना होता है, सारा कुछ कर लिया, अब एकांत में बैठ जाओ चुपचाप और कुछ दूसरी बात के बारे में सोचो। अपने आप वो जो स्पेस है, वो जो अंतराल है विचार के बीच में, विचार विचार के बीच के अंतराल में, उसमें उत्तर प्रकट होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर उस दुविधा से टू बी और नॉट टू बी की हम बाहर निकलेंगे, उस अनिर्णय के पक्षाघात से, पैरालिसिस ऑफ इनडिसीजन से बाहर निकलेंगे। तो ये दो बातें। उसके बाद जब भी कोई डिसीजन हमको लेना है, ये देखना है कि गिल्ट कॉन्शियस ना हो, अपराध भाव से डिसीजन नहीं लेना है कि मैं यहां पर डिसीजन ले रहा हूं, परंतु जैसे हैमलेट डिसीजन ले रहा था पर अंदर से कोई कह रहा था मुझे मारना नहीं चाहिए, बिकॉज ही वॉज अ नोबल मैन, बहुत अच्छा व्यक्ति था वो, पर पता नहीं उसको क्या हो रहा था, उसके मन की स्थिति पर किताबें लिखी गई है, बहुत अच्छा व्यक्ति था वो, परंतु पता नहीं क्या उसको हो रहा था, एक अपराध भाव था। डिसीजन तो ले रहा था मारना है, परंतु फिर हटता था पीछे, फिर आगे जाता था, फिर पीछे हटता था, अपराध भाव। तो हमारा कोई भी डिसीजन लेते समय गिल्ट कॉन्शियसनेस ना हो हमारे पास। उसके बाद में ट्रस्ट योर इंट्यूशन, अंतकरण की भी एक आवाज होती है। 10 लोगों से हमने मिले, 10 लोगों से पूछा मधुबन में आना है क्या, मधुबन में आके परमानेंट रहो क्या, किसी ने कहा अरे नहीं बिल्कुल नहीं, किसी ने कहा आ जाओ, किसी ने कहा क्या कर रहे हो पहले जॉब पूरा करो, पढ़ाई पूरी करो, 1000 लोगों ने 1000 बातें बताई, पर सुनना किसकी है, हमारे अंतकरण की इंट्यूशन की आवाज, वो क्या कह रही है। और वो बहुत गहराई में है, बहुत डीप है, बहुत अंदर है हमारे, उसकी भी तो आवाज हमको सुननी है। और इतनी परतें उसमें चढ़ गई है कि शायद हम वो सुनना ही बंद कर दिया है। इसके लिए डिसीजन लेने के लिए एक चीज बहुत आवश्यक है, प्यूरिटी। जितनी अधिक प्यूरिटी होगी उतनी अधिक परखने की शक्ति होगी, और जितनी अधिक परखने की शक्ति है उतना ही अधिक शक्तिशाली निर्णय होगा। निर्णय कमजोर हो रहा है कि गलत हो रहा है क्योंकि परख नहीं पा रहे, और परख नहीं पा रहे क्योंकि प्यूरिटी कम है। प्यूरिटी जितनी ज्यादा बढ़ेगी अपने आप परखना तीक्ष्ण हो जाएगा, ये राइट ये रॉन्ग, ये करना है ये नहीं करना है, ये सार ये असार, शरीर सत्य है, शरीर के सुख सत्य है या आत्मा, या आत्मा के सुख सत्य है, करना क्या है जीवन में। इन चीजों के पीछे भागते रहूं जो विनाशी है, या भगवान आया है और समय इतना कम है मेरे पास कि मुझे पुरुषार्थ सारा एड़ी चोटी का जोर यहां लगा देना है, कितना काम बाकी हुआ बाकी है। संसार की आत्मा है, सुबह की मुरली में था ना, चिल्ला रही है, दुखी है, झगड़े हैं, भाई भाई कहते पर है नहीं, ऐसी अवस्था में। इसलिए बाबा ने कहा तुमने समय को पहचाना है परखने की शक्ति से, क्या वास्तव में पहचाना है या भ्रम में। तो एक बात बताई, गिल्ट कॉन्शियस ना हो, और दूसरा अंतकरण की आवाज को सुनना। 3 कछुए होते हैं तो वो लोग ना पिकनिक को जाते हैं, बरसात का थोड़ा मौसम होता है, बहुत खुला मौसम होता है, पर वो पिकनिक को जाते हैं। तो पहला कछुआ जो है वो सैंडविच बनाता है, दूसरा कछुआ जो है वो जैम बनाता है, तीसरे के पास कुछ नहीं रहता है, वो उनके साथ खाली कंपनी के लिए जाता है। तीनों एक जगह पहुंचते गार्डन में, अपना सब निकालते तो बारिश होने लगती है। तो पहला कछुआ कहता है देखो मैंने तो सैंडविच बनाया, दूसरा कहता है मैंने तो जैम बनाया, तुम जाके अब छाता लेके आओ। वो कहते मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं जाते तुम लोग खा लोगे, मुझे भी खाना है। वो कहते हम नहीं खाएंगे, वो कहते नहीं तुम खा लोगे, कहते प्रतिज्ञा करो, तो कहते हाँ जब तक तुम नहीं आओगे हम लोग सैंडविच नहीं आओगे, सैंडविच नहीं खाओगे, अब जाओ। तो वो चला जाता है, तो कुछ मिनट पास हो जाते अभी तक आया नहीं, कुछ घंटे बीत जाते अभी तक नहीं आए, कुछ दिन 10 दिन हो जाते अभी तक आया नहीं। तो पहला कछुआ कहता है अब क्या करें, अब तो हमको खाना ही चाहिए। ऊपर से पीछे से आवाज आती है, मुझे पता था तुम लोग ऐसा ही करोगे, मैं यही छुप के बैठा हूं, मुझे पता था जैसे मैं नहीं आऊंगा तुम लोग खा लोगे, इसलिए तो गया ही नहीं। इस कहानी को इनडिसीजन के लिए बताई जाती है, वो निर्णय नहीं कर पाता, जाऊं अगर गया तो ये लोग खा लेंगे, इसके लिए वही दुबक के बैठा रहता है। तो ये एक बात। अगला कीप बैकअप, कोई भी डिसीजन लेंगे तो क्या चाहिए, बैकअप चाहिए। बैकअप उदाहरण, उदाहरण इधर नहीं आए समर्पित नहीं हो तो डिग्री तो रहे। बैकअप, बैकअप कोई भी डिसीजन के लिए बैकअप, जैसे कि उदाहरण बैकअप रखना है। हाँ ट्रेन में रिजर्वेशन कर लिया है परंतु बैकअप रखना है, वो नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो वो, बैकअप चाहिए थोड़ा सा छोटे छोटे डिसीजंस के लिए। इसलिए जैसे अमृत वेला है, पहले ही थोड़ा सा जल्दी, जैसे कोई सोचे मैं 4 बजे उठता हूं, नहीं उठा तो गया, इसके लिए डिसीजन होना चाहिए थोड़ा पहले का, 3:30 का या उससे भी पहले का। ये तो एक छोटा अलग उदाहरण है, पर बैकअप अर्थात एक डिसीजन तो ले रहे हैं, फाइनल हो गया वही करना है, पर यदि वो नहीं हुआ तो ये एक बैकअप हमने अपने पास रखा हुआ हो। हाँ कुछ ना कुछ तो बैकअप हमारे पास होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस यस और नो वाला नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा बैकअप चाहिए हर चीज के लिए। डिसीजन मेकिंग में ये बहुत 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 काम आता है। तो ये 3 चीजें, उसके बाद में लास्ट 2, एक दोस्त की भांति अपने आप से बात करो। जैसे ये भाई है, इसने एक डिसीजन लिया है कि वो जॉब छोड़ के एक कंपनी का जॉब छोड़ के दूसरे कंपनी में जा रहा है, तो इसका दोस्त बनकर मैं इसके पास जा रहा हूं और इसको समझा रहा हूं, भाई तुम क्यों छोड़ रहे हो, वो तो बहुत अच्छा है ना। तो खुद ही के पास खुद ही जाना है दोस्त बनकर, और दोस्त के रूप में अपने आप को समझाना है कि ऐसा ऐसा है, ये स्वयं स्वयं का दोस्त बनकर डिसीजन मेकिंग में। तो दोस्त जो होता है हमेशा हितैषी होता है, हितचिंतक होता है, गुड विशर होता है, वो हमको बताएगा। और लास्ट 16th, डेविल्स एडवोकेट, जैसे कोई केस लड़ रहा है, ठीक है, और हमारा एक वकील है जो हमारे पक्ष में बोलता है पर दूसरा वकील हमारे विरोध में बोलता है, तो अपने ही विरोध में खड़ा हुआ वकील बन जाना कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूं ना वो उसके विरोध में बोले, मैंने ये डिसीजन लिया तो वो सामने से बोल रहा है कि नहीं नहीं ये बिल्कुल नहीं करना तुम, मैं सोच रहा हूं कि कल से अमृत वेला बिल्कुल एकदम 3:30 से भी पहले उठ जाऊं, सामने वाला बोलेगा अरे दिन भर सोना है क्या तुमको, ऑब्जेक्शन तो डेविल्स एडवोकेट अर्थात तो उसके विरोध में खड़े हो। ये प्रैक्टिस है, पहला हमने किस लिए कहा, पहला फ्रेंड, फ्रेंड के रूप में अपने आप को समझाया, पर दूसरे हमको अपोजिट पॉइंट्स भी पता चाहिए, क्योंकि कोई दूसरा है नहीं यहां, ये खेल हमारे अंदर ही हो रहा है, हम ही सब कुछ है, हमारे ही अंदर ये सारा महाभारत चल रहा है, हम ही शकुनी है, हम ही दुर्योधन, हम ही दुशासन, हम ही पांडव, हम ही कौरव, हमारे ही अंदर सारा खेल महाभारत का खेल चल रहा है। ये सब कौन है, जरासंध, शकुनी, कंस, शिशुपाल, जयद्रथ, कौन है, ये सब हमारे अंदर चल रहा है, हम ही कभी कुछ बन जाते हैं, कभी हम ही कर्ण है विवश, कभी हम ही भीष्म है विवश, कभी हम ही कृपाचार्य, कभी हम ही द्रोणाचार्य, कभी हम ही द्रुपद, सब हम ही है, कभी हम ही द्रौपदी भी है, दूसरों पर हंसती है, कभी हम ही भीम है जो हमेशा युद्ध की भाषा बोलता है, कभी हम ही युधिष्ठिर है जो न्याय की भाषा बोलता है, कभी हम ही अर्जुन है जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, हम ही सब कुछ है, सारे अंदर सारे पात्र हम में ही समाये हुए हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ। इसके लिए जो हम निर्णय ले, ऐसा ना हो कि हमने जो निर्णय ले और दूसरे जब उस निर्णय का विरोध करे तो हम डिप्रेशन में आ जाए, इससे पहले हम खुद ही अपना विरोध कर दें तो वो डिप्रेशन नहीं रहेगा, फिर उन हम में पावर आ जाएगी सामना करने की उस विरोध को। तो जीवन में जब भी कोई निर्णय करना हो तो ये 16 बातें हैं, फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। पहला, सारी इंफॉर्मेशन गैदर, इकट्ठा करो उस पर्टिकुलर चीज के बारे में, सब चीज के बारे में नहीं, अदरवाइज टू मच इंफॉर्मेशन कॉजेस पीसलेसनेस, बेचैनी हो जाती है। इसके लिए पहले जो डिसीजन लेना है, जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है, जहां जॉब करना है, जहां रहना है, जो कार्य करना है, जो सेवा करनी है, उस सेवा के विषय में, उस जॉब के विषय में, उस कर्म के विषय में जानकारी हासिल करो। एक दूसरा ऑप्शंस कि यही है कि दूसरा भी ऑप्शन है, कि हम भूल ही जाते हैं कभी कभी कि ऑप्शन बी भी है। अंग्रेजी में एक किताब है ऑप्शन बी, हमारी एक पेशेंट पढ़ रही थी, हमको तो नहीं पता, हमने कहा आप क्या पढ़ रहे हो, उसने कहा यह किताब है ऑप्शन बी, बहुत प्रसिद्ध किताब है, इसमें एक महिला का वर्णन है जो बहुत बड़े पोस्ट पे है, उसके पति ने अचानक शरीर छोड़ दिया और वो डिप्रेशन में चली गई, क्या करूं क्या नहीं, और फिर अचानक एक दिन उसको समझ में आया कि क्या दुखी होकर ही मैं अपना जीवन बिताऊं, क्या ऑप्शन बी भी है या लाइफ में, या ऑप्शन ए ही है बस, इज देयर एन ऑप्शन बी, और फिर एक नई शुरुआत हुई जीवन की। और उसने फिर बाद में एक किताब लिखी, वो गूगल की कुछ सीईओ या कोई फेसबुक की कोई सीईओ है, ऑप्शन बी। तो सेकंड इज ऑप्शंस, ये मत समझना बस यही एकमात्र है, ऑप्शंस है हर चीज में। थर्ड, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, फायदा क्या है, नुकसान क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, बेनिफिट्स क्या है, लॉसेस क्या है, मुनाफा क्या है, टोटा मुनाफा वॉट एवर, ये तीन। उसके बाद में फियर, भय, मेरे अंदर भय क्यों है, ये मैं करना चाहता हूं पर भय है, कुछ पता नहीं कुछ ना हो जाए, वो भय को जानो, अपने भय को जानना, मेरे अंदर जो अज्ञात भय छिपे हुए है क्या है, वो भय सामना करना है उन भयों का, नहीं तो भय अंदर ही अंदर डराते रहेंगे। नेक्स्ट, वर्स्ट से वर्स्ट क्या हो सकता है, मर जाऊंगा वो क्या हो सकता है शरीर छूट जाएगा और क्या होगा, दुनिया के लोग, अभी हम नक्की पर थे थोड़ी देर पहले, दो कुमार ज्ञान में नहीं है बाहर के, तो वो महाराष्ट्र से निकले साइकिलिंग करते हुए, पूरे भारत में उन्होंने संकल्प किया है, गरीबी हटाओ का संकल्प लेके गुजरे और पर्चे कुछ बांट रहे, उनकी कोई संस्था जैसा है, देखो इतनी ठंडी में घूम रहे थे साइकिल लेके और उनका लक्ष्य क्या है, गरीबी को हटाना और हम यहां आध्यात्मिक गरीबी हटानी है उनको, तो हमको तो उनसे कितना अधिक पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कल सुबह निकल जाएंगे, हमारा एक भाई था वो उनको थोड़ा घुमा रहा था, तो क्या कहा, भय। उसके बाद में वर्स्ट केस सिनेरियो, क्या क्या हो सकता है, ये दो बातें। उसके बाद में अगली दो बातें, दूसरों के विषय में उस इस डिसीजन से दूसरों पर क्या परिणाम होगा, क्या उनकी योग की स्थिति बढ़ जाएगी, उनकी योग युक्त तो हो जाएंगे, अगर मैं डिसीजन लेता हूं मौन में रहने का तो बाकियों पर क्या परिणाम होगा, तो दूसरा और तीसरा बताया। अगला, नहीं नहीं, एक तो भविष्य में क्या परिणाम होगा इसका, भविष्य और दूसरे, ये दो बातें हैं। फिर उसके बाद में रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, जैसे कोई तलाक लेने का सोच रहा है बहुत हो गया, अब टू मच ना, अति हो गई। पर ये डिसीजन रिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल कैटेगरी में जाएगा या रिवर्सिबल? रिवर्सिबल है तो ठीक है, ठीक नहीं हुआ तो वापस कर लेंगे, रिवर्सिबल। दूसरा बताया, इंपल्सिव है या इंटेलिजेंट डिसीजन है? बस आवेश में आ गए, इसने हमको वैसा कह दिया, बस उसका नंबर डिलीट कर दिया, और जब काम पड़े तो ढूंढ रहे हैं अब उसका नंबर मोबाइल में, दूसरे को पूछ रहे हैं उसका नंबर दो, गुस्से गुस्से में तो डिलीट कर दिया था, ऐसे ही करते ना लोग, ब्लॉक कर दो, डिलीट कर दो या कुछ कर दो। तो इंपल्सिव डिसीजन था वो, सोचा समझा हुआ नहीं था। उसके बाद में फाइव वाइज, क्यू 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 क्यू, पीछे पीछे जाना है। क्यों मैं लेट सोता हूं? क्या जल्दी सो सकता हूं क्या? उत्तर आएगा, नहीं तुमको तो ये भी तो करना है ना, ईमेल चेक करना है, ये करना है, क्या भेजना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है। तो फाइव वाइज। उसके बाद में थॉट स्पेसिंग, एकांत में बैठ जाओ और सारा ऑर्गेनाइज करो उसको। बेस्ट प्लेस है बाबा का कमरे में, बैठ जाओ कोई भी डिसीजन लेने से पहले, और फिर ऑर्गेनाइज अपने आप हो जाएगा। नेक्स्ट, हाँ, गिल्ट कॉन्शियस नहीं होना चाहिए डिसीजन लेते समय। नेक्स्ट, ट्रस्ट इंट्यूशन, अपने अंतकरण की आवाज को सुनना। नेक्स्ट, बैकअप, बैकअप चाहिए थोड़ा सा। उसके बाद में अपने आप से दोस्त की तरह बातें करना, दोस्त की तरह समझा, अच्छा तुम ये डिसीजन ले रहे हो पर इससे तुमको नुकसान भी हो सकता है, सोच लो एक बार, अच्छा मतलब बात कर रहा है। और फिर डेविल्स एडवोकेट, अर्थात खबरदार ये तुमने किया ना बहुत खराब होगा तुम्हारे साथ, अपने आप से ही जज वकील बनकर बात करना। तो दीज आर 16 स्टेप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। अगर ये होगा तो वो जो हेमलेट की स्थिति है वो नहीं होगी, टू बी और नॉट टू बी, इस विडंबना से, इस दुख दुविधा से हम मुक्त हो जाएंगे। ओम शांति।